نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم وقت کی قدر کیجئے. اس کتاب میں سے جو ٹاپک آج دیکھیں گے وہ ہے بندے کے ذمہ 10 حقوق. اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایمان والے کی صبحیں، دوپہریں اور شام کیسی ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کو کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا اور طریقہ بھی سکھایا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن، اللہ تعالیٰ کی دیوی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے وقت میں برکت ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد ہم لوگ وہ بھی کر لیتے ہیں جو کبھی بھی کرنے کا موقع نہیں ملتا. ایک ایمان والے کی زندگی اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے. دنیا میں دوسری چیزیں روپے، پیسے، دولت سے خریدی جا سکتی ہیں. ایمان والے کی سب سے بڑی دولت، کرنسی، اس کی نیکی ہے. اور نیکی جو ہے وہ کیسی ہے جس کو آپ اور میں اس دنیا میں ہی کر سکتے ہیں. ہم قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ بات پڑھتے ہیں کہ موت کے وقت حسرت ہوگی، جیسے سورۃ منافقون کے اینڈ پہ آتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کیا مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، اور مہلت کا دوسرا نام وقت ہے. تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ بندے کے ذمے 10 حقوق کیا ہیں. پیج 66 ہے اور ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے مومن کے صبح و شام کا. بک کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. وہ 10 حقوق جن کی رعایت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے اور جن کا یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے. ناگزیر کہتے ہیں جسے بھاگا نہ جا سکے. گزیر کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، جس سے بندہ بھاگ نہیں سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کر کے ہی دم لینا ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ کام کرنے لازم ہیں. ان کی ادائیگی میں اسے افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے. افراط کہتے ہیں بڑھنا اور تفریط کہتے ہیں کمی کرنا. لفظ فروتا ہے، یعنی نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، بلکہ ہر حق کا جو تقاضا ہو اسے پورا کرنا چاہیے. ان حقوق کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ نساء آیت 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی، رشتہ دار، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ کرو. اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 حقوق ہیں، اور ان حقوق میں پہلا اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جو ساری مخلوقات کا خالق اور سارے امور کا مالک ہے. وہی زندگی دینے والا ہے اور ساری نعمتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. اب آپ دیکھیے ذرا سے اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں، ایسے ہی احتساب کے ناطے سے. جس انسان کے اوپر اتنے حقوق ہوں، کیا وہ غفلت کی زندگی جی سکتا؟ دنیا میں آپ کہتے ہیں نا، حقوق کو فرائض کی جنگ ہے جی، اب ان حقوق کو پورا کرنا ہے، حقوق دینے ہیں، ویمن رائٹ، اینیمل رائٹ، فلاں رائٹ، ساری دنیا میں رائٹس کا غول غلا ہے. کیا آپ پر میں اپنے آپ کو ان 10 حقوق کے اندر جکڑا ہوا پاتے؟ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. دیکھیے، پوچھئے خود سے، کیا میں اللہ کا حق ادا کرتی ہوں؟ کب کرنا ہوتا ہے اللہ کا حق؟ ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ، زندگی کے ہر موڑ پہ، خوشی میں، غم میں، تنہائی میں، محفلوں میں. اللہ کی ہستی جو ہر وقت ہمیں بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ پے کیے نعمتیں دے رہی ہے، تو کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کریں گے؟ سورۃ نحل آیت 53 میں آتا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو کیا پتہ چلا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے حق کو ادا کرنے میں سستی سے کام لے یا اس سے غفلت برتے. अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला के ये हुकूक देने कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आती है? नमाज। अल्लाह ताला के रोज़ाना के हुकूक में सबसे नुमाया हक नमाज है, जिसमें खुशू को अल्लाह ताला ने मोमिनीन की अव्वलीन सिफत करार दिया है। सूरत मोमिनून आयत 2 में आता है, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। फिर इसी तरह से सूरत मोमिनून ही की आयत 9 में आता है, वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाजों की मुहाफिजत करते हैं, हिफाजत करते हैं। खुशू क्या था? अंदर की कैफियत, कि जब नमाज अदा करते हैं तो उनका दिल साथ दे रहा होता है, दिल को भी शामिल रखते हैं, दिल में आजजी होती है, अल्लाह के आगे झुकने का एहसास होता है। और हिफाजत क्या है? ज़ाहरी हिफाजत, वक्त की हिफाजत, वुजू की हिफाजत, तहारत की हिफाजत, क़िबले की हिफाजत, दिल में नियत का होना कि अल्लाह ने खड़ा किया, फिर एक एक रुकू, सजदा, क़याम, एक एक रकत, एक एक बोले हुए लफ्ज़ की हिफाजत, ये सारी हिफाजतें होती हैं, फिर कहीं नमाज नमाज होती है, वरना तो बस वो एक फरीज़ा अदा होने वाली बात है। अल्लाह ताला ने इस शख्स की हलाकतों बर्बादी का फ़ैसला फरमाया है जो नमाज से इस हद तक गाफिल हो कि इसका मुतय्यन वक्त फौत हो जाए। इसकी दलील सूरत माउन आयत 4 एंड 5, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साखून, फिर तबाही है इन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। तब आप ज़रा सा अपने ऊपर लीजिए इसको, क्या मैं अल्लाह का ये हक देती हूँ? और अभी तो एक हक नमाज इंट्रोडक्शन है अल्लाह के हकूक की अदायगी का, हम तो अभी और बाकी नहीं दे पाते। हर नेमत पे शुक्र अदा करना अल्लाह का हक है, हम हर चीज़ में अल्लाह सुबहाना ताला पे नज़रें लगाएं, ये हक है। कोई नज़र ना आए किसी दुख तकलीफ़ के वक्त में, किसी से मांगा ना जाए किसी तलब के वक्त में। खुद से पूछिए, यहाँ बैठ के चुटकी काटें कितनी नेमतें खा के बैठी हूँ, यहाँ से उठते ही अब फिर नेमतों की तरफ भागूंगी। क्या अपने मालिक का हक अदा करती हूँ? ना शुक्री तो नहीं हो? जो नेमत मिलती है उसको पकड़ कर ये तो नहीं कहती, हाँ तो फिर क्या, देना नहीं था, करना नहीं था? नहीं, तो अपने आप से कहिए, यहाँ रुकिए, आज के बाद दिन में कम से कम 5 बार खुद से ये सवाल पूछूंगी, क्या अल्लाह सुबहाना तआला का हक अदा करती हूँ? और फिर अल्लाह से चुपके चुपके बातें करें। यानी आप कहेंगे नमाज तो पढ़ती हूँ, नहीं, हर नमाज से पहले, बाद में, उसके दौरान, आपकी मर्जी है, पर खुद को एहसास दिलाना है कि मेरे मालिक हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, मैं और आप सारी जिंदगी सर सजदों में रख दें, उसकी बंदगी का हक अदा नहीं होगा, ये हमारी खुशफहमी है, बच जाएंगे और कल क़यामत के दिन वहाँ से हिल नहीं सकेंगे जब तक मालिक का हक ना दिया। 3 सेकंड देती हूँ, गौर कीजिए, खुद से कुछ मशवरे कीजिए, अपना एहतसाब करें और अल्लाह से कुछ बात करें। और अगर नमाज में कुछ कमी बेशी निकली तो तौबा करें। फिर देखिए ज़कात, क्या ये अल्लाह का हक नहीं है? 100 में से 250, चंद सेकंड सोचिए, आज तक अपनी ज़ाती चीज़ों पे ज़कात दी, जेवर पे दी, जमा पूंजी पे दी? किसी ने नहीं, मेरे तरफ से दी तो ज़िम्मेदार मैं हूँ। हिसाब कीजिए, फिर रोज़े देख लीजिए, आज तक छुट्टे हुए रोज़े पूरे किए, फिर कोई मन्नत मानी, अदा की, कोई भी चीज़ अल्लाह के नाम पे कमिट की, उसको पूरा किया। अल्लाह ताला के हकूक़ की लिस्ट बड़ी लंबी है, हम नहीं दे सकते, बस वही कहूँगी जो कुरान ने कह दिया और सहाबा के डर भरे दिलों पर एक किस्म का फाहा रखा कि चलो ठीक है, फिर फत्तकुल्लाह मस्तता, तुम फिर अल्लाह से उतना तो डरो जितना तुम कर सकते हो। तो आप और मैं यहाँ ये कहकर आगे चलें कि अल्लाह हम तेरा हक नहीं दे सकते, तो बस फिर जो दे रहे हैं जितना दे सकते हैं तो इसको कबूल कर ले। हाँ, गफलत को दूर कीजिए और नज़र रखिए। तो पहला हक, अब ये हक देते देते ज़िंदगी गुजर जाएगी, हक अदा नहीं होगा। सारा माल अल्लाह के रस्तों में निछावर कर दूँ मैं, हक अदा नहीं होगा। पैदल चल के हज करके आ जाऊँ तो इस जिस्म का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह ने जो जो दिया है उन चीज़ों को अल्लाह के रस्तों में खपाऊंगी तो ही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आ जाएगा। तो आज से अपनी चीज़ों को अपनी नहीं समझें, अल्लाह की समझें। अल्लाह के मामले को बड़ा संजीदा मामला समझें। इस वक्त आपका यहाँ आके बैठ जाना और अल्लाह ने आपको तौफीक दी उसकी किताब को खोलने की, पढ़ने की, क्या आप और मैं इस नेमत का हक दे सकते हैं? सोचिए ज़रा, क्या आपकी मेरी ज़िंदगी में वाकई ये एहसास, ये शऊर मौजूद है? ये बस आप और मैं ख़ुद देख सकते हैं। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। ये सिर्फ फिर एक बस शोर गोली है जो हम अपने इर्द गिर्द बचा के रखते हैं। तो दूसरे हक पे अगर चलें, बबिल वालिदैनि एहसाना, अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा हक इंसान पर उसके वालिदैन का है। इसीलिए कुरान में तौहीद और अल्लाह की खालिस बंदगी के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का जिक्र आया। एक तो हमने इस आयत में पढ़ा, फिर इसी तरह सूरत बनी इसराइल आयत 23 में देखिए, वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ इसकी, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। कदा का लफ्ज़ बड़ा अहम है इधर। डिसाइडेड, फैसला तकदीर में कर दिया तुम्हारी। कुरान और सुन्नत ने माँ के हक़ को ख़ास तौर पर अहमियत दी है। सोचिए ज़रा, इसलिए कि इसका हक कतई है और वो रियायत की ज़्यादा मोहताज है, और बच्चे की परवरिश में इसकी मुशक्क़तें भी ज़्यादा हैं। तो फिर माँ के हक़ सोचिए। दलील सूरत अल-अहक़ाफ़ की आयत 15 15, हमलत हु उम्मुहु कुरहं व वदात हु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। इसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर इसे पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही इसको जना, और इसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। माँ के लिए साल में एक दिन ख़ास कर लेना, जिसे लोग मदर्स डे का नाम देते हैं, इस्लाम की निगाह में ना तो काफ़ी है और ना वो इसे पसंद करता है, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि माँ के लिए सब दिन मदर डे हो। सोचिए ज़रा, क्या माँ का हक अदा किया? या फिर चंद सेकंड सोचिए। आप देखिए, माँ और बाप क्या हैं? कुदरत का एक तोहफा नहीं है? जितना बच्चे माँ बाप को सताते हैं हर रंग में, देखिए बच्चे ना भी सताए ना तो भी सता रहे होते हैं, कैसे? प्यार से, मोहब्बत से। दिल अटका रहता है, जिसमें दिल हर वक्त अटका रहता है वो क्या है? किन की फिक्र हर वक्त खाई रहती है? कौन घर नहीं आया, कौन होमवर्क नहीं कर रहा? और आप कहते हैं ना, बच्चे छोटे हैं छोटे हैं तो बस बड़े होंगे तुम बेफिक्र हो जाएंगे। ये तो आपको तब पता चलेगा जब बड़े होंगे। छोटे बच्चों की छोटी छोटी फिक्रें, बड़े बच्चों की बड़ी बड़ी फिक्रें। छोटे बच्चों के मसले आप खुद हल कर लेते, बड़े बच्चों के मसलों के लिए आपको अल्लाह की ख़ास मदद की ज़रूरत होती है। अब आप सोचिए कि आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो वो लोग जो हमें इंसान बनाए, जो लोग हमें एक अलग किरदार दें, जो हमें पढ़ना लिखना सिखाएं, उसमें मदद दें, फिर उनका हक क्या होगा? किसी का कॉल कि मेरे 3 माँ बाप हैं, अपने माँ बाप जिन्होंने पैदा किया और पाला पोसा, और मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, दुनिया में इंसान बनना सिखाया, और तीसरे मेरे ससुराल के जिन्होंने अपनी बेटी मुझे दी और उसने मेरा घर बसाया। देखा जाए, सास ससुर खुद डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई बेटी या उनका दिया हुआ बेटा आपकी अगली ज़िंदगी में कितना अहम है, खुद ही अभी सोच लें। आपके शौहर कैसे आपके पास है और आपकी बीवी आपको कैसे मिल गई? कोई थी ना हस्ती जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, फिर आपको दे दी वो बच्ची, या कोई ले गया आपको अपने घर में? तो याद रखिए, ससुराल का भी बड़ा हक है। कभी सास को बुरा ना कहे, कभी ससुर को बुरा ना कहे, किसी रूप में भी। उनका यही बहुत बड़ा हक है कि उन्होंने अपना पाले पोसे जिगर के टुकड़े आपके हवाले कर दिए, और अब आप उनको इतना अपना समझें कि उनके माँ बाप की शक्ल देखने की उनको इजाज़त ना दें इल्ला माशाल्लाह। और रह के पीछे उस्ताद, तो किसी ने कहा कि मेरे माँ बाप मुझे आसमान से ज़मीन पे लाए, दुनिया में वजूद मेरा बना, और उस्ताद मुझे ज़मीन से ऊपर उठाता है। जितनी उस्ताद को आपके और मेरे अखलाक की, किरदार की, मेरे इंजाम की फ़िक्र होती है, शायद किसी हद तक माँ बाप को भी ना होती हो। देखा गया कि अमूमन माओं को और बापों को बच्चों की फ़िज़िकल नीड की ज़्यादा फ़िक्र होती है। खा लें, पी लें, जूते आ जाएं, गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, खुश रखो, ईद पे जे दे दो, छुट्टियों में ले जाओ। हाँ, ख्वाहिश तो सभी की होती है कि बच्चे बहुत अच्छे हों, लेकिन जो रुझान होता है माँ बाप का बच्चों के लिए, वो मादी चीज़ों के लिए होता है, इनको खुश रखना है। लेकिन उस्ताद की नज़र किस पे है? वो भी नहीं चाहता कि बच्चे भूखे रहें और वो कपड़े ना पहने और मौसम के मुताबिक ना, लेकिन उसका हर वक्त का हम और गम उनकी किरदार साजी होती है। किरदार क्या बन रहा है, पीछे से क्या बनेंगे, ये चलते कैसे हैं, ये अभी तक बोलते कैसे हैं, ये अभी इनकी अंदाज कैसे हैं, इनके दिल कैसे हैं, ये कब बदलेंगे? तो हमेशा अपने उस्तादों की कदर करें, चाहे किसी ने आपको एक लफ्ज़ पढ़ाया या पढ़ने में मदद दी, उनके पाँव के नीचे आपके हाथ हों तो भी हक अदा नहीं हो सकता। इसके बाद फिर कराबतदार, भाई बहनें, चचा चचियाँ, फूफा फूफियाँ, मामू मुमानियाँ, और उनके बेटों और बेटियों के हकूक़ आते हैं। इनके अलावा जो रिश्तेदार हैं उनके भी हकूक़ हैं, यानी ये एक लंबी लिस्ट है ना, जिसमें आप कह लीजिए बबिजिल गुरबा आते हैं, कराबत वाले। और कराबत कई किस्म की है, ये भी अल्लाह का बड़ा एक प्यारा तोहफा सा है हमारे लिए कि रिश्तेदारियाँ दे दी, ख़ानदान के लोग बना दिए। क्या होते अगर हम अकेले होते, हम कितने महरूम तबा लोग होते उस वक्त में। इनको भी खुश रखिए, एक एक रिश्ते पे गौर करें, मेरा अपने भाइयों से ताल्लुक़ कैसा है, मेरा अपनी बहनों से ताल्लुक़ कैसा है। भाई को क्या कहते हैं, माँ जाया, बहन माँ जाई। एक छोटी सी कोठरी में आपने एक ख़ास वक्त गुजारा है, सेम जगह पे, वहाँ से आप बरामद हुए और आज अपने भाई और बहन से नाराज़ हैं। कभी वो बंदा खुश रह सकता है जो अपने ही जिस्म के एक टुकड़े से नाराज़ हो? तो आप जहाँ बैठे बैठे अपने भाइयों के लिए दुआ करें, उनके लिए दिल में रंजिश है तो उसको दूर करें, और अपनी बहनों से जाकर माफ़ी मांगें। आज उनमें से किसी को हो गया ना, सबसे ज़्यादा दुख आपको होगा, फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन फिर एक बार भी आप जाकर आई एम सॉरी नहीं कह सकेंगे, मौका आज है। फिर इसी तरह आप देखिए चचा फूफियाँ मामू खून के रिश्ते हैं जो भी, ज़िंदगी में कभी कभी ऊंच नीच होती है, जाएं वो इज़्ज़त करते हैं, आप जाएं वो खुश होते हैं, वो आए आप खुश हैं, वो भी देते हैं आप ही देते हैं, ये ज़रा सा दूर का ताल्लुक़ होता है। लेकिन अगर कहीं भी दिलों में कोई रंजिश है, इसको दूर कीजिए। फिर आप देखिए आगे कज़न्स, इसका सिलसिला फिर काफ़ी दूर तक जाता है। तो आज के बाद अपने हर रिश्तेदार को कुरान की सायत और इस हुक्म की नज़र से देखिए कि ये तीसरा बड़ा हक है मेरे ऊपर कि मैंने अपने रिश्तेदारों को खुश रखना है। बाज़ लोग, अल्लाह मुझे और उनको हिदायत दे, सबसे अच्छे हैं, रिश्तेदारों की शक्ल नहीं देखनी, सबको लेने देने में दरिया दिल, और रिश्तेदारों को देने में गिनते हैं पहले उसने क्या दिया था और कब दिया और मैंने पहले क्या दिया, तो ये अच्छी आदत नहीं होगी। इसके बाद अब देखिए चौथा हक कहाँ आता है, माशरे के कमज़ोर लोगों में, यतीमों मिसकीनों और मुसाफिरों के हकूक, मेल जोल के लोग, रिश्तेदार पड़ोसी या दूर के पड़ोसियों का भी हक है, साथियों का भी हक है जो सफ़र और खजर में साथ रहता है, ख्वाह ये रिफाकत आरजी हो यानी थोड़ी देर की हो या दायमी मुस्तकिल, और हकूकुल ज़ौजैन भी इसी में आते हैं। इस आयत में देखिए वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूब वस्साहिबि बिल जंबी वाबनि सबील वमा मलकत अयमानुकुम, आखिरी हक के इस आयत में देखें अगर आप, ग़ुलाम मासियाँ नौकर, अगर जिनका ताल्लुक़ ग़ुलामी के ज़माने में ग़ुलामों के साथ हुस्ने मुआशरत का था, हुस्ने सलूक से था, लेकिन इस लफ्ज़ के अमूम में वो सारे हैवानात, सामान और आलात और दीगर चीज़ें शामिल हैं जो इंसान के मातहत हैं, और वो इन अशिया के साथ हुस्ने सलूक का पाबंद है, वो इसी तरह कि इनकी निगरानी और हिफाजत करे और इनकी भरपूर रियायत करें और इन्हें बर्बाद न होने दें, इसलिए कि वो इन चीज़ों का अमीन है। अब आप देखिए कि ये सारे हक अदा करते हैं। इसके बाद जब मुसलमान सोने का इरादा करे तो उसके लिए मुस्तहब यानी रिकमेंडेड पसंदीदा है कि वो वज़ू करे और 2 रकत नमाज पढ़े, फिर अपने बिस्तर पर दाएं पहलू लेट जाए और सोने के वक्त जो अज़कार हैं इनका विर्द करे। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है और ये दुआ हमें सही बुखारी में किताबु दावात में मिलती है। बिस्मिका रब्बी वदातु जम्बी वबिका अरफ़ऊहू इन अमसकता नफसी फ़ग़फ़िर लहा व इन अरसलतहा फ़ग़फ़ज़हा बीमा तख़फ़ज़ु बिही इबादक सालेहीन। तर्जमा क्या है? ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे नाम से मैंने अपने पहलू को बिस्तर पर रखा और तेरे ही नाम से उठाऊंगा। अगर तू मेरे नफ्स को अपने पास रोक ले तो इसकी मग़फ़रत फरमा, यानी अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे बख्श दे, और अगर तू इसे वापस दुनिया में आने के लिए छोड़ दे तो इसकी हिफाज़त इस तरह फरमा जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाज़त फरमाता है। तो आप देखिए कि इस तरीके से इन हकूक़ की फ़िक्र लग जाती है एक बंदे को जब वो ख़ुद को अल्लाह की निगाहों से देखता है। तो हमने क्या सीखा इस सेशन में? कि एक मुसलमान बेकार और फालतू वक्त गुजारने वाला इंसान नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हर हक को अदा करता है, हकूक़ में सबसे पहले अल्लाह का हक, अल्लाह के हक में सबसे पहले नमाज, रोज़ा, ज़कात, मन्नत, हर वादा जो अल्लाह के नाम पे किया, हर कमिटमेंट जो अल्लाह के लिए की, अल्लाह के दीन को फैलाना, उसकी खिदमत करना, और इसी तरह एक लंबी लिस्ट। फिर इसके बाद दूसरा हक माँ बाप का, और माँ बाप 3 किस्म के, और तीनों की वजह भी समझ आती है कि हम उनके हक़ क्यों अदा करें। फिर उसके बाद रिश्तेदारियाँ, ज़िल क़ुरबा, लंबी लिस्ट, खसब के रिश्ते, नसब के रिश्ते, खून के रिश्ते, सहर के रिश्ते, रज़ात के रिश्ते, दूर के और करीब के रिश्ते। फिर उसके बाद मुआशरे के अंदर फैले हुए लोग जिसमें मुख्तलिफ लेवल के लोग हैं, और फिर आखिर में लौंडी गुलाम। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन 10 हकूक़ में सुरखरू कर दे, और जब हम रात को सोएं बिस्तर पे तो अल्लाह को राज़ी करके सोएं। अल्लाह ताला मेरी आपकी मदद फरमाए। अभी इतना काफ़ी है, मुहासबा कीजिए, खुद से पूछिए कहाँ कमी है, उस पर काम करना है। कोई बात नहीं, कल तक कमी थी अब नहीं रहेगी, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने गौर व फिक्र करना है, और अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए इस बात को बहुत आसान करे। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत्तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.